الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. इस क्लास में हम आजकल हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातहू उनकी किताब उलूमुल कुरान में से पढ़ते हैं, और इसमें जो मौजू चल रहा है वो है तफसीर कुरान में गुमराही के असबाब। यानी जो सीधा रास्ता है उसको छोड़ करके कोई ना कोई गलत रास्ता इख्तियार कर लेना, गुमराही। इसके क्या क्या असबाब होते हैं, रीजंस बनते हैं, तो उसमें से हम पढ़ चुके हैं कि जी अहलियत का ना होना, बगैर अहलियत के ही तफसीर करना शुरू कर दे, और फिर उसके बाद जो है वो गलत फहमियाँ। ठीक है, तो उसमें फिर एक थी उलमा और इजारादारी, और दूसरा फिर उसी के तहत उलमा और पापाइयत। ये गलत फहमी है कि उलमा ने हमारे दीन के अंदर भी ईसाइयत वाला ही निज़ाम चला रखा है। फिर उसके बाद ये तो गलत फहमियाँ थी ना, उलमा की इजारादारी और उलमा और पापाइयत। फिर गुमराही के असबाब होते हैं, उनमें दूसरा सबब, पहला सबब क्या था? अहलियत का ना होना। दूसरा सबब कुरान करीम को अपने नजरियात के ताबे बनाना। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं या बदलने की कोशिश कर देते हैं। ये दूसरा सबब गुमराही का। और तीसरा सबब जमाने के अफकार से मरूबियत, यानी जो भी करंट दौर चल रहा है, करंट दुनिया के अंदर राइज अफकार हैं, सोचे हैं, फिक्रें हैं, तो उनसे मरऊब हो जाना, और फिर कुरान मजीद की तफसीर को पढ़ना या तफसीर करने की कोशिश करना। तो ये गुमराही का तीसरा सबब हजरत ने लिखा है, जो उसके ऊपर काफ़ी तफसील के साथ पिछले हफ्ते बात हो रही थी इसी क्लास के अंदर, कि ये पेज नंबर 376 पर है हम, 76, 300, 376। तो तारीख इस्लाम के हर दौर में हजरत ने लिखा था कि ऐसे अफराद की एक जमात मौजूद रही है जो कुरान और सुन्नत के उलूम में पुख्तगी पैदा किए बगैर अपने ज़माने के फ़लसफे की तरफ मुतवज्जे हुए। ठीक है, यानी अहलियत की बात यहाँ पर नहीं हो रही। ठीक है ना, अहलियत का मौजू जो है वो पीछे गुजर चुका है। अहलियत का मतलब क्या था कि आपने उन उलूम में गहराई हासिल करी हो, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हो, कुरान मजीद का इल्म हासिल किया हो, और अरबी जुबान का इल्म हासिल किया हो, और हदीस मुबारक का इल्म हासिल किया हो, तो फिर आप अहल हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है, तफसीर कुरान के लिए। यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है पुख्तगी पैदा किए बगैर, और ये चीज़ हम पिछली दफ़ा क्लियर कर चुके थे कि यहाँ पुख्तगी से मुराद जो है वो यकीन है, यकीन, यकीन पैदा किए बगैर। ठीक है, तो कुरान मजीद के ऊपर यकीन नहीं, उसके बगैर ही जो है वो उसकी तफसीर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने ज़माने के फ़लसफ़े की तरफ मुतवज्जे हो गए, और वो फ़लसफ़ा उनके जहनों पर इस बुरी तरह मुसल्लत हो गया कि वो उसके बनाए हुए फ़िक्र व नज़र के दायरों से बाहर निकलने की सलाहियत ही से महरूम हो गए। ठीक है, एंट्रैप हो गए दूसरे फ़लसफ़ों से। इसके बाद जब उन्होंने कुरान करीम की तरफ रुजू किया और उसकी बहुत सी बातें उन्हें अपने आइडियल फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ महसूस हुई, यानी जो उनका अपना आइडियल फ़लसफ़ा था उसके ख़िलाफ़ महसूस हुई, तो उन्होंने उस फलसफे को झुटलाने की बजाय कुरान करीम में तहरीफ व तरमीम शुरू कर दी, और उसके अल्फाज को खींच तान कर अपने फलसफियाना अफकार के मुताबिक बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसमें एक सवाल है कि कुरान करीम में तहरीफ व तरमीम का मतलब क्या है? कि कुरान करीम में तहरीफ व तरमीम शुरू कर दी, तो यहाँ पर कुरान करीम में तहरीफ व तहरीम शुरू तहरीफ व तरमीम शुरू कर दी, कुरान करीम के अल्फाज में तहरीफ व तरमीम शुरू कर दी। नहीं, यहाँ पर अल्फाज की तहरीफ व तरमीम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कौन सी तहरीफ व तरमीम की बात हो रही है, मानी कुरान की तहरीफ व तरमीम ना। ठीक है, तो अब ये मानी कुरान जो है ये कहाँ से आते हैं, ठीक है, कि उसमें जो ये तहरीफ व तरमीम कर रहे हैं तो ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये सवाल है आपसे। तफसीर बिल राय नहीं है ये हम पीछे बात कर चुके हैं और आप तो थे भी क्लास के अंदर। तफसीर बिल राय जो है वो गलत नहीं है, डिपेंड करता है कि आप उसूलों से हटके तफसीर बिल राय कर रहे हैं या उसूलों के मुताबिक तफसीर बिल राय कर रहे हैं। बहरहाल, अभी सवाल क्या है कि किससे इख्तलाफ किया, कुरान करीम की के मानी में तहरीफ व तरमीम जो करी तो किससे इख्तलाफ किया इन्होंने, किससे किसको कॉन्ट्राडिक्ट किया इन्होंने, मुफस्सिर, इन्होंने डायरेक्ट मैसेज में जवाब लिखा है मुफस्सिर को, अल्लाह ताला से इख्तलाफ किया। अच्छा, अल्लाह ताला ने तफसीर बयान करी थी आपको, अल्लाह ताला से इख्तलाफ किया का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने तफसीर बयान करी थी, अल्लाह ताला ने तो तफसीर नहीं बयान करी कुरान मजीद की, ठीक है ना। अल्लाह ताला तो खालिक है ना, मालिक है, कादिर है, राइट, राजिक है, तो अल्लाह ताला से इख्तलाफ किया, नहीं, अल्लाह ताला से तो कोई इख्तलाफ नहीं किया, अल्लाह ताला के तो अल्फाज आ गए कुरान मजीद की शक्ल में, तो इन्होंने किससे इख्तलाफ किया, इन्होंने इख्तलाफ किया बशर, किससे, बशर से इख्तलाफ किया, खालिक से इख्तलाफ नहीं किया, मखलूक से इख्तलाफ किया। मखलूक के अंदर कौन कौन आ जाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहले अफजलुल बशर, फिर उनके बाद नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा, फिर उनके बाद ताबईन, फिर उनके बाद तबा ताबईन, उनके बाद फिर जो उम्मत के उलमा मुफस्सरीन हजरात सारे, ठीक है। तो कुरान मजीद में जो उन्होंने तहरीफ और तरमीम शुरू करी तो ये इख्तलाफ किससे कर रहे हैं, ये अल्लाह से इख्तलाफ नहीं कर रहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो तफसीर बयान ही नहीं करी, ये अपने जैसे इंसानों से यानी बशर से इख्तलाफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बशर से इख्तलाफ करना यही तहरीफ और तहरीम बना, ठीक है ना, क्योंकि कुरान मजीद की जो तफसीर बयान करी वो सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम ने बयान करी, फिर उनके बाद जो है वो उम्मत के उलमाए कराम यानी सहाबा ताबीन तबा ताबीन वगैरह, ठीक है। तो इख्तलाफ जो करते हैं ना, यानी जो गुमराह तबका इख्तलाफ करता है वो अल्लाह से इख्तलाफ नहीं करता, क्योंकि अल्लाह से इख्तलाफ का तो मामला ही नहीं होता, अल्लाह ताला कोई आगे से बहस की थोड़ी कर रहे होते हैं इन लोगों के साथ, ठीक है ना, अल्लाह ताला के साथ उनकी कोई डिस्कशन को थोड़ी हो रही होती है कि जी मैं आपसे इस बात में इख्तलाफ करता हूँ, मैं आपसे इस बात में इख्तलाफ करता हूँ, ये तो इंसानों से इख्तलाफ कर रहे होते हैं ना, ठीक है। तो ये एक अहम नुक्ता है जिसको कि हमें समझना चाहिए कि इंसानों से इख्तलाफ का मसला है सारा का सारा, ठीक है ना। अच्छे इंसानों से इख्तलाफ करना ये इंसान को गुमराह कर देता है, बुरे इंसानों से इख्तलाफ करना ये इंसान को जो है वो राह रास्त के ऊपर ले आता है, ठीक है। जब मुसलमानों में यूनानी फलसफे का चर्चा हुआ और लोगों ने कुरान सुन्नत के उलूम में पुख्तगी पैदा किए बगैर उस फलसफे को हासिल करना शुरू किया, ठीक है, यानी ईमान में पुख्तगी पैदा किए बगैर, यकीन में पुख्तगी पैदा किए बगैर उस फलसफे को हासिल करना शुरू किया, तो यही फितना पेश आया, और बाज लोग जो यूनानी फलसफे से बुरी तरह मरऊब हो गए थे कुरान करीम को तोड़ मोड़ कर उस फलसफे के मुताबिक बनाने की कोशिश में लग गए, उनमें बहुत से लोग मुखलिस भी थे, मुखलिस भी थे, क्या मतलब, अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते थे, ठीक है, अपने ज़ोम में अल्लाह की रजा हासिल करना चाहते थे, क्या मतलब, मुखलिस का मतलब क्या होता है, अल्लाह की रजा हासिल करना, ठीक है ना, उसको इखलास कहते हैं। और इखलास का ऑपोजिट क्या होता है, यानी किस चीज को कहते हैं कि जी ये इखलास नहीं है, इखलास ना होने का मतलब क्या होता है, कि अल्लाह की रजा की खातिर नहीं बल्कि इंसानों की रजा की खातिर काम करना, या दुनिया के जो माल दौलत है उसके लिए कोई काम करना, या दुनिया का जो नसब है, जो मनसब है, ओहदा है, उसके लिए काम करना, ठीक है, ये इखलास नहीं होता। ठीक है, तो इखलास की तारीफ हमें मालूम होनी चाहिए, इखलास का मतलब क्या है। ठीक है, अगर पहले से मालूम नहीं थी तो अब उम्मीद है कि आप लिख लेंगे इसको अपने दिल के सफ़े के ऊपर भी और कागज़ के ऊपर भी। ठीक है, इखलास वो होता है अल्लाह की रजा के लिए काम करना, और इखलास का ना होना का मतलब ये होता है कि अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह के लिए काम करना, चाहे वो इंसानों की रजा के लिए, चाहे वो माल दौलत के लिए, चाहे वो जाहो मनसब के लिए, इसको इखलास का ना होना कहते हैं। तो इन लोगों के अंदर इखलास भी था। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्या फरमाते हैं, इखलास वाले भी थे, मुखलिस भी थे, और सच्चे दिल से ये समझते थे कि यूनानी फलसफा नाकाबिले तरदीद है, यानी बाकायदा दे एक्चुअली बिलीव्ड इन इट, दे वर नॉट फेकिंग इट। देखे ना, दे वर नॉट फेकिंग इट, कि पता है इनको कि यूनानी फलसफा जो है वो काबिले तरदीद है, लेकिन ऊपर से झूठ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये काबिले तरदीद नहीं है। नहीं, दे जेन्युइनली बिलीव्ड कि यूनानी फलसफा जो है वो काबिले तरदीद ना काबिले तरदीद है, जेन्युइनली बिलीव। ठीक है, जैसे अनफॉर्चुनेटली आज हम में से भी बहुत सारे लोग हैं, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि साइंस, जैसे आपने लिखा, साइंस जो है वो नाकाबिले तरदीद है, या वेस्टर्न अथॉरिटी, वेस्टर्न क्या कहते हैं उस लफ्ज का, मैं प्रोनाउंसिएशन ही भूल जाता हूँ, हेजेमोनी कहते हैं या हेगेमोनी तो पढ़ते हैं लेकिन पता नहीं हेजेमोनी कहते हैं उसको कुछ, तो उनका जो अथॉरिटी है, उनका जो 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 रिट है ना वेस्टर्न, वो नाकाबिले तस्खीर है, वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं, सिंसेरली बिलीव करते हैं। ठीक है, अच्छा, यूनानी फलसफा नाकाबिले तरदीद है, हेगेमनी, अच्छा हेजेमनी शायद, बहरा जो भी है अल्लाह की मर्जी, बहरा तो यूनानी फलसफा नाकाबिले तरदीद है, यहां का भी क्या मतलब है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा ना कुरान करीम में तहरीफ व तरमीम का मतलब क्या है, और अब यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनानी फलसफा नाकाबिले तरदीद है का मतलब क्या है। यूनान ये क्या है, राइट, व्हाट इज दिस। देखिए, हम आपसे जो जो बात की खाल निकालते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी खामखा में नहीं निकाल रहे होते, अगरचे कि आपको लग रहा हो खामखा में निकाल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका कोई रीजन होता है। तो यूनानी फलसफे का मतलब क्या है, यूनान क्या चीज है, ये किसी आंटी का नाम है, अब जरा हंसी मजाक के लिए आंटी बोल देते हैं, या किसी अंकल का नाम है, ग्रीक फिलोसफी में अच्छा था, क्या तर्जुमा किया आपने जबरदस्त किस्म का, इज इट अ प्लेस, यूनान इज अ प्लेस। तो यूनानी फलसफा जो है वो यूनान का जो प्लेस है वो प्लेस क्या है, वो कोई फलसफा बयान करती है वो प्लेस, राइट, वो प्लेस फलसफा बयान करती है जिसको यूनानी फलसफा कहते हैं, या यूनान, ये यूनान जो है वो हेराक्यूलस का नाम है, वो एक बड़ा सा एक कोई उनका गॉड था, हेराक्यूलस कहते थे उसको, है ना, वो उसने अपने कंधे के ऊपर जो है आसमान को उठाया हुआ होता था, नाउज बिल्ला। ठीक है, तो ये क्या हेराक्यूलस का नाम है, क्या है ये यूनानी फलसफा, लाइक एरिस्टोटल्स, ठीक है ना, यानी क्या मतलब है, ये इंसानों का बयान किया हुआ एक नजरिया है, फलसफा है। ठीक है, तो यूनानी फलसफे से इख्तिलाफ का मतलब क्या है कि आप कंट्री ऑफ यूनान से इख्तिलाफ नहीं कर रहे, आप किसी यानी दियोहेकल किस्म के जिन से इख्तिलाफ नहीं कर रहे, या इस किस्म की कोई यानी अंकल आंटी से इख्तिलाफ, बल्कि ये वो अफराद हैं, है ना, प्लूटो, एरिस्टोटल, या इनके और जितने भी थे। ठीक है, तो आप उन लोगों से इख्तिलाफ कर रहे हैं या आप उन लोगों का इकरार कर रहे हैं, ठीक है ना, ये कह रहे हैं ना कि यूनानी फलसफा नाकाबिले तरदीद है का मतलब क्या है कि यूनानी फलसफी नाकाबिले तरदीद है, वो लोग नाकाबिले तरदीद, इट्स ऑल अबाउट पीपल, इट्स ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स ऑल अबाउट पीपल, यू एग्री विद पीपल और यू डिसएग्री विद पीपल, लोग, इंसान, आपके जैसे इंसान। यूनानी फलसफी जो थे उनके चार हाथ होते थे, वो क्या आसमान में उड़ा करते थे, राइट, वो क्या यानी जिस तरह से वो नहरें चला दिया करते थे, बस यूं कोई मैजिक वैंड जो है वो चलाया और नहरें चल गई और ये हो गया, वो यानी खुदाई सिफत नहीं, वो इंसान थे, वही दो पैर दो हाथ दो आंखें और दो कान और एक नाक, सही बोला ना मैंने, राइट, सुकरात अरस्तु वगैरह, ठीक। तो यूनानी फलसफा कोई यानी भाई ये भी इंसानों का ही है, ये भी सारा मामला इंसानों का ही है, ठीक है ना, इंसानों के पीछे कौन है छुपा हुआ, ठीक है ना, पीछे कौन है छुपा हुआ, उधर रहमान इधर शैतान, इधर शैतान उधर रहमान, लेकिन वो तो पीछे है ना, फ्रंट लाइन में कौन है, वो तो हजरते इंसान है ना, बशर है ना, ठीक है ना। अब आप किसको नाकाबिले तरदीद समझते हैं, उन घटिया गलीज अफकार वाले इंसानों को और आमाल वाले इंसानों को, या सादिक अमीन परहेजगार शरीफ नेक इंसाफ करने वाले बेहतरीन अखलाक वाले, उनको आप नाकाबिले तरदीद समझते हैं। हम किसको नाकाबिले तरदीद समझते हैं कि जिनके बारे में ऐसा भी नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं है, हमें पता है कि वो किस किस्म के लोग हैं, लेकिन हम उनको फिर भी नाकाबिले तरदीद समझते हैं, और जिनके बारे में हमें पता है कि वो अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, हम उनको काबिले तरदीद समझते हैं, हम उनको काबिले तरदीद समझते हैं। तो अजीब मामला है ये, अजीब, ऑक्सीमोरॉन, राइट, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, किस किस्म के लोग हैं हम जो कि ऐसा करते हैं, ठीक है ना, लेकिन दूसरों से तवक्को करते हैं कि अच्छे लोगों को कबूल करना चाहिए और बुरे लोगों को जो है कबूल नहीं करना चाहिए। अजीब, अपने बारे में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, दूसरे के बारे में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट पीपल, है ना, इट्स ऑल अबाउट मेन, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, आदमी, ठीक है, यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, उधर भी आदमी इधर भी आदमी। अच्छा, और कुरान और सुन्नत की मुतवारिस तफसीर, उसके लाए हुए फिक्री सैलाब का मुकाबला नहीं कर सकेगी, यानी जो हमें विरसे में जो तफसीर मिली है ना ऊपर से, कुरान की कुरान से तफसीर, कुरान की हदीस से तफसीर, कुरान की आसार सहाबा से तफसीर, ये विरसे में चली आ रही है ना, ये जो है ना यूनानी फलसफे का, यानी यूनानी फलसफियों के नजरियात तो ख्यालात का मुकाबला नहीं कर सकेगी, ठीक है, यानी ये वही बात है जो कि आप में से एक नौजवान को या जो समझा रहा था कि भाई किताब क्या चीज होती है, बाकी लोगों को पर बयान में भी बताया था कि किताब क्या चीज होती है, किताब कोई दरख्त से उगा हुआ फल होता है, कोई डाली पे लगा हुआ अनाज होता है, कोई पहाड़ पे पड़ा हुआ पत्थर होता है, किताब किताब, राइट, व्हाट इज किताब, पत्थर फल अनाज या आसमान से बादल से गिरा हुआ पानी का कतरा, ये होता है किताब, किताब क्या है भाई, किताब किताब लिखने वाले के अफकार हैं, लिखने वाले इंसान के अफकार हैं, और वो ऐसे अफकार हैं जो उसने इस मकसद से लिखे हैं कि वो अपने पढ़ने वाले को मुतासिर कर सकें, वो सिर्फ अपने अफकार नहीं है, वरना अपने अफकार आप किताब में नहीं लिखते, आप अपने जहन में बचा के रखते हैं, या आप ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं, अपने बच्चों को बता देते हैं, किताब तो नहीं लिखते ना, आपने किताब लिखी है, आप में से कितने हैं जिन्होंने किताब लिखी है, लेकिन क्या आप लोगों के पास अफकार नहीं है, अफकार तो हर एक के पास होते हैं, सोचें तो हर एक के पास होती हैं, क्या हर बंदा किताब लिखता है, नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा अपने बीवी को बता देगा, अपने शौहर को बता देगी, अपने बच्चों को बता देगी, किताब तो वो लिखता है जिसका मकसद ये होता है कि मेरे अफकार को दूसरे लोग कसरत के साथ पढ़ें और उनकी जहन साजी हो मेरे अफकार के मुताबिक हो, दिस इज व्हाट अ बुक इज। तो बुक को हमने जो न्यूट्रल चीज समझा हुआ है ना कि कोई असर नहीं होता बुक का, बस मेरी मर्जी, नहीं, ऐसा नहीं होता, किताब का असर होता है पढ़ने वाले के ऊपर, लिखने वाले का बेस्ट सेलर हो या लेस देन बेस्ट सेलर हो, उसको ऐसा लिखना आता है कि जिससे कि लोगों का जहन मुतासर हो सके, ठीक है। तो अब आप सोच लें आपके बच्चे जो हैं वो किताबें पढ़ते हैं तो माशाल्लाह अपने जहन के ऊपर बड़ा जबरदस्त उनको काबू होता है, कंट्रोल होता है, कि जी वो बिल्कुल मुतासर नहीं होने देंगे जिस ऑथर की वो किताब पढ़ रहे हैं उसके अफकार से। मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, वरना तो बड़े भी मुतासर होते हैं, ऑफ कोर्स बड़े भी मुतासर होते हैं, लेकिन बच्चों के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो मुतासर नहीं होते? हम समझते हैं नहीं, कोई मुतासर नहीं होते, राइट? अजीब, ये भी अजीब, ठीक है ना? यानी अजायब का पूरा अजायब खाना है हमारा, हमारा मामला, सही? तो सच्चे दिल से ये समझते थे कि यूनानी फलसफा नाकाबिले तरदीद है, और कुरान और सुन्नत की मुतवारिस तफसीर जो आई हुई है ना ऊपर से अच्छे अच्छे लोगों से जो आई हुई है, वो यूनानी फलसफियों के अफकार का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उस तफसीर को बदल कर कुरान और सुन्नत की ऐसी तशरीह करनी चाहिए जो यूनानी फलसफे के मुताबिक हो। लेकिन दर हकीकत ये कुरान और सुन्नत और इस्लाम के साथ एक नादान दोस्ती थी, क्योंकि वो मुखलिस थे ना, इस वजह से दोस्ती दोस्ती कह रहे हैं, ठीक है? तो वो कहते हैं ना, नादान दोस्त से जो है ना वो दाना दुश्मन ज्यादा अच्छा होता है, अकलमंद दुश्मन जो है ना वो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये नादान दोस्त थे तो जाहिर है उन्होंने फिर नुकसान पहुंचाना था। तो जिसने इस्लाम की कोई खिदमत करने की बजाय मुसलमानों में नजरियाती इंतशार बर्पा कर दिया और मुतजिला और जहीमिया जैसे बहुत से नए फिरके पैदा कर दिए, इसका नतीजा ये हुआ कि वो पुख्ता कार उलमाए दीन, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। अच्छा, मुतजिला और जहीमिया वगैरह जैसे लोग थे ना, तो ये शियाओं का मसला, शिया फिरका एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड से आया, ठीक है ना? शिया फिरका जो है वो किसी फलसफे, किसी जो है वो अफकार के उसमें नहीं आया, ठीक है? वो तो आया सीधा सीधा, यानी नादान दोस्तों ने शिया फिरका पैदा नहीं किया, दाना दुश्मनों ने शिया फिरका पैदा किया, ठीक है ना? अकलमंद दुश्मन ने ये रवाफिज वाला पैदा किया, ठीक है? वो एक डिफरेंट किस्म का फिरका है। ये जहीमिया और ये सब जो है ना, ये कदरिया और पता नहीं कितने सारे थे वो, तो ये नादान दोस्तों के पैदा किए हैं, ठीक है? समझ गए होंगे आप, उम्मीद है कि नादान दोस्त से क्या बनाते हैं यहाँ पे ना। अच्छा, इन्होंने लिखा है, व्हाट लेड देम टू बिलीव दैट थॉट, व्हाट लेड देम, व्हाई डोंट यू टेल अस, व्हाट लेड देम टू बिलीव दैट थॉट, आप बताएं, ठीक है? हम तो बता चुके हैं, अब आपसे टेस्ट कर रहे हैं कि अब आपको कितनी बात समझ में आई। तो थोड़ा सोचते हैं तो फिर अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल जाता है। अच्छा, इसका नतीजा ये हुआ कि वो पुख्ता कार उलमाए दीन, यानी जो यकीन वाले उलमाए दीन थे, जिन्हें कुरान और सुन्नत के उलूम में रसूख यानी यकीन हासिल था, और जो कुरान और सुन्नत के मुकाबले में वक्त के किसी चले हुए निजाम फिक्र से मरऊब नहीं थे, ठीक है ना? सही मानों में जो आजाद थे, जहनी तौर पर आजाद, ठीक है, उनकी एक बड़ी जमात को दूसरे काम छोड़कर ऐसे लोगों की तरदीद में मसरूफ हो जाना पड़ा, और उन्होंने यूनानी फलसफे की फिक्री गलतियों की निशानदेही करके ऐसे लोगों की मुदल्लल और मुफस्सल तरदीद की जो इस फलसफे के असर से कुरान और सुन्नत में मानवी तहरीफ के मुर्तकिब हुए थे, लफ्जी तहरीफ नहीं, मानवी तहरीफ के जो लोग मुर्तकिब हुए थे, तो उनको जो है ना वो उन्होंने जबरदस्त मुंह तोड़ किस्म का जवाब दिया इल्मी तौर तरीके से। गर्ज, एक अरसे तक फिक्री मबाहिस यानी बहसों का और तसनीफ और मुनाजरे का बाजार गर्म रहा, इधर से भी किताबें लिख रहे हैं, उधर से भी किताबें लिख रहे हैं। ये वो दौर था जब यानी मुसलमान जो थे ना वो वर्ल्ड्स ओनली सुपर पावर थे, और सिर्फ मिलिटरली सुपर पावर नहीं थे बल्कि फाइनेंशियली और सोशली, राइट, इंटेलेक्चुअली, हर लिहाज से ये दुनिया के बिल्कुल यानी पीक पर थे, ठीक है? तो अब ये अंदर ही अंदर, बाहर से बिल्कुल बॉर्डर्स जो हैं वो महफूज हैं, कोई यानी परिंदा पर नहीं मार सकता मुसलमानों के शहरों के ऊपर, उनके देहातों के ऊपर, और अंदर जो है ना वो यानी इतनी स्टेबिलिटी थी, तो अंदर जो है ना ये हरकतें चलनी शुरू हो गई, और फरीकैन की तरफ से अपने अपने मौकफ की तायीद में पूरे कुतुब खाने तैयार हो गए, ठीक है? क्योंकि सारा वो दौर जो था वो इल्म इल्म का दौर था, पढ़ने का, पढ़ाने का, आगे एक एक उस्ताद के जो दर्स में हजारों लोग आते थे, बल्कि लाखों भी कभी आते थे, हत्ता के वो बड़ों से सुना कि जो मुकब्बिर होता था ना, यानी उस्ताद की आवाज, लाउडस्पीकर तो होता नहीं था, तो अब उस्ताद की आवाज जो है वो हजारों के मजमे में कैसे जाएगी? तो फिर मुकब्बिर बिठाते थे, जैसे कि हरम की नमाज में आज भी मुकब्बिर होता है लाउडस्पीकर के बावजूद। लेकिन अब वो तो खैर एक रवायत चल गई है, इस वजह से होता है। लेकिन उस्ताद ने बोला, फिर जो करीब बैठे हुए मुकब्बिर, डेजिग्नेटेड मुकब्बिर हैं, उन्होंने उसको रिपीट कर करके बोला। पीछे मुकब्बिरों की एक नेक्स्ट रिंग होती थी, वो सुनते थे, यानी जैसे फर्स्ट रिंग रोड, सेकंड रिंग रोड, थर्ड रिंग रोड, ये होता है ना मक्का मुकर्रमा मदीना, उस तरह से मुकब्बिरीन की रिंग्स होती होंगी। तो 40,000 तो सिर्फ मुकब्बिर थे। अब ये 40 या 4 हो सकता है, इसमें कुछ गलत हो गया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हजारों में तो मुकब्बिर होते थे खाली। ठीक है, तो इतना पढ़ने पढ़ाने का मामला चल चल पड़ा था इस्लामी दुनिया के अंदर। ये 1300 साल तक हम क्या करते रहे हैं, खाली जो है वो जंगे को थोड़ी लड़ते रहे 1300 साल तक। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह की जी जरा उनके दर्स के अंदर इस तरह से होता था। पुख्ता कार उलमाए दीन का मौकफ ये था कि कुरान करीम, देखिए ये असल बात है, ये जो पुख्ता कार लिखा ना, क्या अहले यकीन, हम यानी अपनी सादा जुबान में हम कहें अहले यकीन उलमाए दीन का मौकफ ये था कि कुरान करीम किसी इंसान की नहीं, उस खालिक कायनात की किताब है जो इस दुनिया में और इसमें होने वाले वाकयात की रत्ती रत्ती से बाखबर है, और इस दुनिया के बदलते हुए हालात से उससे ज्यादा कोई बाखबर नहीं हो सकता। राइट, ही इज द क्रिएटर, नॉट इवन जस्ट ए मैन्युफैक्चरर। आज सुबह भी बात हो रही थी ख्वातीन में, ए मैन्युफैक्चरर वो होता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों को जोड़ करके कोई नई चीज बना देता है, सानिअ कहते हैं उसको। अल्लाह ताला सानिअ नहीं है, अल्लाह ताला सिर्फ सानिअ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला खालिक है, यानी अदम से वजूद में किसी को लेकर के आने वाला, नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लेके आने वाला। तो उसको नहीं पता होगा अपनी मखलूक के बारे में तो और किसको पता होगा, और उसको सब कुछ नहीं पता होगा तो फिर वो खालिक कैसा कैसा खालिक है जिसको सब कुछ नहीं पता। ठीक है, वो आजकल तो होता है ना, एक एयरक्राफ्ट बनाते हैं तो इतनी सारी कंपनियां मिलकर के एयरक्राफ्ट बनाती हैं। कोई कंपनी सिर्फ जो है वो उसका कंडीशनिंग सिस्टम बना रही होती है, कोई कंपनी सिर्फ उसका एग्जॉस्ट सिस्टम बना रही होती है, तो हर एक को दूसरे के सारी चीजों का पता नहीं होता कि उसने ये चीजें कैसे बनाई होंगी, इसको कैसे फिट किया होगा। ठीक है, अल्लाह ताला ने किसी की मदद से नहीं बनाया, कोई आउटसोर्स नहीं किया, किसी किसी पोर्शन को हमारे जो है ना वो किसी दूसरे के हवाले नहीं किया, सब कुछ खुद बनाया। ठीक है, लिहाजा कुरान करीम की तालीमात और उसके बयान करदा हकायक सदाबहार, कराची में एक शादी हॉल भी होता है ना सदाबहार, हमेशा बहार की हालत में रहने वाला और नाकाबिले तरमीम है। जिन अहकाम कवानीन और नजरियात पर जमाने की तब्दीली असरअंदाज हो सकती थी, उनके बारे में कुरान करीम ने खुद कोई मुअय्यन बात कहने के बजाय ऐसे जामे उसूल बयान फरमा दिए हैं जो हर तब्दीली के मौके पे काम आ सकें। ठीक है, यानी एक जनरल बात करी है, स्पेसिफिक बात करी नहीं, जो कि जमाने के हिसाब से जो चीज चेंज होती रहती हैं, कुरान मजीद ने उनके बारे में उमूमी सी बात करी है। और ठीक है, और उनकी रोशनी में हर बदले हुए माहौल में रहनुमाई हासिल की जा सके, उन उसूलों की, जामे उसूलों की रोशनी में। ठीक है, लेकिन जो बातें कुरान करीम ने वजाहत के साथ बयान फरमा दी हैं या जिनकी वाज़ह तफसीर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो जमाने की तब्दीली से बदलने वाली बातें नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये यानी खालिक कायनात और खालिक जमाना, जमाने के खालिक का भी, अल्लाह ताला ने जमाना भी तो बनाया ना, माजी, हाल, मुस्तकबिल, वक्त, राइट। फलसफा और साइंस की तारीख इस बात की गवाह है कि इसके वो बेशतर नजरियात जो कतई मुशाहिदे पर मबनी नहीं है, फलसफे के और साइंस के जो कतई मुशाहिदे पर मबनी नहीं है, कतई का मतलब होता है बिल्कुल एब्सोल्यूट, जिसमें कोई शको शुबे की गुंजाइश ना हो, ऐसी चीज को जो है वो कतई कहते हैं, वरना बाकी चीजें जन्नी होती हैं, उनको जन्नी कहते हैं, जिनके बारे में आप 100% श्योर नहीं है। ठीक, तो जो कतई मुशाहदे पर मबनी नहीं है, मुख्तलिफ जमानों में बदलते रहते हैं, और जिस जमाने में जो नजरिया राइज रहा वो लोगों के जहन व फिक्र पर इस तरह बुरी तरह से छा गया कि लोग उसके खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयार ना रहे। कौन से लोग? सारे लोग नहीं, बल्कि जिनका किसी चीज पर यकीन नहीं था, डोलते रहते थे। ठीक है, तो वो बस जो चीज राइज होती है, सिक्का राइज उल वक्त, जो ज्यादा बढ़ चढ़ करके बोल रहा होता है ना, बस वो उसी के बारे में एक उनको हो जाता है, ठीक है, यकीन हो जाता है उनको, वो उसी के पर यानी जिद करना शुरू कर देता है। हाँ, आगे आ रहा है इनका जिक्र भी सर साहब का। तो वो लोगों के जहन फिक्र पर इस बुरी तरह से छा गया कि लोग इसके खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयार ना थे। लेकिन जब जमाने के किसी इंकलाब ने इस नजरिए की काया पलटी, तो वही नजरिया इतना बदनाम हुआ कि उसको मुंह से निकालना भी दकियानूसियत की अलामत बन गया। ठीक है, जैसे यूनानी फलसफे की बहुत सारी चीजें हैं, वो दकियानूसियत की अलामत है। कोई अगर बातें करे इस तरह की, नहीं वो सही है, वो सही है, तो ये तो दकियानूस है। अब उसकी जगह किसी नए नजरिए ने जहनों पर अपना सिक्का बिठा दिया, और उसकी घन गरज ने, यानी लाउडली जो शोर मचाते हैं ना, घन गरज ने हर मुखालिफ राय का गला घोंट दिया। फिर एक अरसा गुजरने पर नया नजरिया भी अपनी आन बान खो बैठा, और किसी तीसरे नजरिए ने इसकी जगह किसी तीसरे नजरिए ने इसकी जगह ले ली। फिक्रे इंसानी की तारीख में हमेशा यही होता आया है, और जब तक हकीकत की प्यास इंसान को कतई मुशाहदे तक नहीं पहुंचा देती, यानी एक प्यास तो अल्लाह ताला ने हमारी फितरत के अंदर रखी है, टू नो, जानना, तो अब इसकी जस्तजू में हर बंदा जो है ना, वो अपनी अपनी कैपेसिटी, अपने अपने असबाब और वसाइल के हिसाब से लगा रहता है इसके अंदर कि मुझे और मिल जाए, और मिल जाए, और सच सच का पता चल जाए। तो जब तक हम कतई मुशाहदे तक नहीं पहुंच जाते ना, उस वक्त तक यही होता रहेगा। ठीक है, इसके बरखिलाफ, अच्छा, तो इसकी जैसे मिसाल के तौर पर बहुत मेरे जहन में तो नहीं है, लेकिन जैसे डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, अब ये डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कमबख्तों ने, इनके अपने साइंसदानों ने उसको डिसप्रूव भी कर दिया है, लेकिन फिर भी जो है वो पढ़ाई चले जा रहे हैं, और पढ़ने वालों को पता भी नहीं होता कि ये तो डिसप्रूव हो चुकी है। ठीक है, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का जो है वो गवर्निंग सिस्टम या फाइनेंशियल कंट्रोल का सिस्टम था, वो अब इनका डिसप्रूव हो गया, अब खत्म, बिल्कुल उसको सारे के सारे बुरा भला कहते हैं। हत्ता के जिन इलाकों में ये चीज पैदा हुई थी, अब वही इलाके जो है उसको तर्क कर चुके हैं। ठीक है, सोशलिज्म भी जो है वो अच्छा खासा खत्म हो चुका है, वो भी बस नाम का रह गया, असल में तो कैपिटलिज्म इज द ओनली वन राइट नाउ, वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन कम्युनिज्म भी खत्म हो गया, सोशलिज्म भी खत्म हो गया, अब एक फिलहाल कैपिटलिज्म रह गया, वो भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बरखिलाफ, अच्छा, एक और चीज, वो छोटी सी वो मिसाल अभी पिछले दिनों भी साथियों के साथ शेयर करी थी, वो प्लूटो प्लैनेट वाला मसला, कि प्लूटो जो है ना, जब हम पढ़ते थे, बल्कि आज से शायद 10-15 साल तक जो है वो प्लूटो वॉज बींग थॉट एज ए नाइन्थ प्लैनेट सोलर सिस्टम का, अब जो कहते हैं नहीं, ये तो वो डॉर्फ प्लैनेट्स में से है, ये तो प्लैनेट, प्रॉपर प्लैनेट तो ये है ही नहीं। ठीक है, अभी कहीं पढ़ा, एक लाइन ही पढ़ी है मैंने, उससे ज्यादा पढ़ा नहीं है, कि जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी के बारे में जो साइंस का तस्वुर है कि इट्स अ फोर्स दैट पुल्स थिंग्स, ग्रेविटी एक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, जैसे मैग्नेट अपनी तरफ पुल करता है, तो ग्रेविटी इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक पुल ऑफ प्लैनेट अर्थ, राइट। लेकिन अब जो है ना, वो लगता है कि इसका भी कुछ और आ गया है, कि नहीं, ये पुल नहीं है, बल्कि ये पुश है, ये ऊपर से जो है ना, वो जो चीज, कोई चीज होती है जो कि पुश कर रही होती है, तो इस वजह से चीजें जो है वो नीचे आ रही होती हैं, ये पुल वुल कुछ नहीं हो रहा होता है, पता नहीं। अभी हमने इसके बारे में पढ़ने का भी मौका नहीं मिला कोई, लेकिन हम तो कहते हैं फरिश्तों के जो कॉन्सेप्ट है ना असल में, क्योंकि असल में तो फरिश्ते कर रहे होते हैं, तो वो ज्यादा अलाइंड किसके साथ है, पुश के साथ, पुल के साथ नहीं, क्योंकि फरिश्ते नीचे से पुल नहीं कर रहे होते, ठीक है ना, बारिश के कतरों को फरिश्ते जाए ऊपर से नीचे लेके उतर रहे होते हैं ना, तो ऊपर से नीचे उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा या पुश करना पड़ेगा। तो अगर इन्होंने वाकई अपना जो है वो बना दिया है कि ग्रेविटी जो है वो ऊपर से पुश करने को कहते हैं, तो वो ज्यादा अलाइंड है फरिश्तों के कॉन्सेप्ट से, अल्लाह आलम बिस्सवाब। एनीवे, तो कहते हैं कि इसके बरखिलाफ कुरान करीम ने जिन हकाइक की तरफ वाज़ेह रहनुमाई अता की है, वो चूंकि एक ऐसी जात के बयान किए हुए हैं जिसके सामने ये पूरी कायनात और इसमें होने वाले हवादिस, यानी नए वाकयात, हवादिस हादसे, नए वाकयात हाथ की हथेली से ज्यादा वाज़ेह और बेगुबार है, जैसे हमारे लिए हमारी हाथ की हथेली के ऊपर कोई चीज हो ना, तो वो हमारे लिए बिल्कुल वाजह होती है ना, और बिल्कुल कोई क्लाउडी नहीं होता अनलेस कि आपकी आंखें खराब हो, तो बिल्कुल क्लियर होता है। तो अल्लाह ताला के सामने जो है ना, हाथ की हथेली से भी ज्यादा वाजह है सारी चीजें जो कि होने वाली हैं, हो रही हैं या हो चुकी हैं। इसलिए फिक्र और फलसफे की इस आंख मचोली को उसके मुकाबले में पेश नहीं किया जा सकता, कोई मुकाबला ही नहीं है भाई इन दोनों चीजों का। ये इंसान जिसको के ना तो आवाज पूरी आती है किसी की, दो आदमी एक साथ मिलके बोलना शुरू कर दें तो ये दोनों में तमीज ही नहीं कर पाता, कहता है यार एक चुप हो जाए फिर मुझे बात समझ में आएगी, है ना। दीवार बीच में आ जाए या कोई हल्का सा पतला सा गत्ता भी बीच में आ जाए ना, इसको उसके पीछे नजर नहीं आता। ये है हजरत इंसान, और ये हजरत इंसान के जो अफकार और ख्यालात, उसका मुकाबला कर रहे हैं आप परवरदिगार से, खालिक और मालिक से। ये भी एक अजीब अजायब खाने की एक और अजीब बात, ठीक है। लेकिन भाई इसको कौन मानेगा? वही मानेगा ना जिसको परवरदिगार का पता हो और जो परवरदिगार को जानता हो। अर रहमानु फसअल बिही खबीरा, परवरदिगार के बारे में खबर रखता हो ना तब उसको ये बातें पता होंगी, लेकिन जो मानता ही ना हो तो फिर वो तो जाहिर सी बात है मुकाबला करने पे आ जाता है। अच्छा, तो आप जमाने के जिस नजरिए से मरऊब होकर कुरान करीम को उसके सांचे में ढालने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि वही नजरिया अहदे जहालत की यादगार साबित हो जाए और आप उसे जबान पर लाते हुए भी शर्माने लगे थोड़े दिनों के बाद, नहीं वो ऑब्सोल्यूट हो जाए और आपको शर्म आने लगे उसके बारे में बात करते हुए भी। ठीक है, तो फिक्र फलसफे की जो आंख मचोली है, अभी हम जो बजाहिर टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक जो है ना जरा बड़ा कायनाती किस्म का टॉपिक है, बड़ा यानी ऐसा लगता है कि जी हम बड़ी 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 बातें कर रहे हैं ना दुनिया के बारे में और कायनात के बारे में और मखलूक के बारे में और है? लेकिन हकीकत ये है कि यही उसूल जो कि कायनात के ऊपर अप्लाई होते हैं ना, यही अफराद के ऊपर भी अप्लाई, यही हर इंडिविजुअल फर्द के ऊपर, यही हर घराने के ऊपर, यही हर मुआशरे के ऊपर भी अप्लाई होता है। ठीक है, कि अल्लाह के बताए हुए जो उसूल हैं वही सही है। हम समझते हैं कि नहीं, मेरा मुझे जो चीज नजर आ रही है कि इससे फायदा होता है, जबकि अल्लाह का हुक्म उससे जो है ना वो कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा या उल्टा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर सादी सी बात, हम तफसीर क्लासेस के अंदर तो बहुत दफा बात होती रहती है इसके ऊपर कि जी अगर खानदान में पर्दा हो जाएगा तो खानदान टूट जाएगा, लोगों में नफरतें पैदा हो जाएंगी, राइट। कजन्स में पर्दा हो गया, खालू से पर्दा कर लिया, फुप्पा से पर्दा कर लिया तो फिर नफरतें हो जाएंगी, खानदान टूट जाएगा, मोहब्बतें खत्म हो जाएंगी। ये क्या है? ये इंसानी अफकार, राइट। और हम सब अनफॉर्चुनेटली तकरीबन सब सब्सक्राइब करते हैं इन अफकार। बड़े बड़े फलसफों को कम्युनिज्म, सोशलिज्म और डार्विन्स थ्योरी और ये तो रहने देना, ये हमारा क्या वास्ता है इन सब चीजों के साथ। हम तो सीधा सीधा अपने घराने की बात करें ना, अपने जात की बात करें ना, क्या हम ये नहीं करते जो चार्ल्स डार्विन ने किया, जो सर सैयद ने किया, है ना। अब सारा मलबा सर सैयद के सर, ठीक है ना, जब शायद उसके साथ एक सर एक्स्ट्रा लगा दिया गया था। एक तो होता है हर इंसान का सर, एक होता है सर सैयद का एक्स्ट्रा सर, ठीक है ना, ताकि सारा मलबा सर सैयद के सर, राइट। लेकिन हम भी तो सर सैयद ही जैसे हैं, हम भी कहते हैं नहीं अल्लाह का हुक्म, ओहो ये तो खानदान टूट जाएगा, ये तो नफरतें हो जाएंगी, ये तो नाकामी हो जाएगी, ये तो वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो भाई ये सारे फिक्र और फलसफे, ठीक है, कि मोहब्बतें बनती हैं जब आपस में मिल बैठते हैं और गप्पे शप्पे लगाते हैं और हंसी मजाक करते हैं तब मोहब्बतें बनती हैं, अल्लाह के हुक्म में मोहब्बतें नहीं बनती, है ना, अल्लाह का हुक्म मानने में मोहब्बतें नहीं बनती। ये क्या है? ये एक फिक्र है, ये एक फलसफा है जो कि किससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, किसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, खालिक। मालिक और कादिर से टकराने की कोशिश कर रहा है। हमारा मुशाहिदा, हमारी अकल, हमारी सोच और एक अल्लाह की अकल यानी अल्लाह का इल्म और अजली और अबदी और सब कुछ, ठीक है ना, कोई मुकाबला है इन दोनों चीजों का? लेकिन हम करते हैं। रासिखुल अकीदा अहले इल्म का ये तर्ज फिक्र तजुर्बे से बिल्कुल सच्चा साबित हुआ और आज फलसफा और साइंस की तरक्कियात ने यूनानी फलसफे की धज्जियां बिखेर दी और इसके न सिर्फ बहुत से तबई अंसरी और फलकियाती नजरियात गलत करार पा गए बल्कि उनकी बुनियाद पर मा बादुत तबीई यानी मेटाफिजिकल नजरियात की जो इमारत उठाई गई थी वो भी जमी बोस हो चुकी है। जिन लोगों ने यूनानी फलसफे की चमक दमक से खीरा होकर कुरान सुन्नत को मोम की नाक बनाया था, जैसे हम बना रहे हैं मोम की नाक, उसी तरह उन लोगों ने बनाया था आज से कई सौ साल पहले मोम की नाक, ठीक है, यानी एक मुहावरा है कि जिसमें क्या आपने क्या हंसी मजाक बना दिया हो किसी चीज को, किसी बड़ी चीज को। अगर आज वो जिंदा होते हैं ना तो यकीनन उनकी नदामत और शर्मिंदगी की कोई इंतहा ना रहती, ठीक है, जैसे कि वो आज जिंदा अगर हो जाए तो उनकी नदामत और शर्मिंदगी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। उसी तरह हम भी अगर इन्हीं अफकार के साथ मर जाएंगे ना और कब्र में इन्हीं अफकार के साथ तौबा किए बगैर पहुंच जाएंगे तो हमारी भी नदामत और शर्मिंदगी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। लेकिन हैरत है कि सतह परस्तों का एक ग्रोह तारीख से कोई सबक लेने की बजाय मगरबी अफकार से मुतासिर और मरूब होकर कुरान और सुन्नत की ऐसी तफसीर घड़ने की फिक्र में है जो मगरब के चले हुए नजरियात पर फिट हो सके। ये ग्रोह तफसीर के तमाम माकूल और मारूफ उसूलों को तोड़कर सिर्फ एक उसूल की बुनियाद पर कुरान करीम के साथ मशक सितम में मसरूफ है, मशक सितम में मसरूफ है, और उसूल ये है कि अल्लाह के इस कलाम को किसी ना किसी तरह खींच तान कर मगरबी अफकार के मुताबिक बना दिया जाए, ठीक है, अल्लाह के इस कलाम को मगरबी अफकार के मुताबिक, अल्लाह का कलाम की मैनिफेस्टेशन कहाँ मिलती है? सहाबे कराम के माहौल के अंदर, जो नबी अलैहिस्सलाम ने माहौल बनाया था, जो सियासत, जो रियासत बनाई थी, जो मुआशरत बनाई थी, वो एज कंपेयर टू मगरबी माहौल, ठीक है ना, आज हम किस तरफ किधर से जो है वो ले रहे हैं? हम सहाबा कराम के माहौल की तरफ जा रहे हैं, हम सहाबियात के माहौल की तरफ जा रहे हैं। कुरान सीखने का शौक तो बड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह में, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम तैयार हैं कि हम सहाबा के जैसा माहौल जो है उनके मुआशरे के अंदर जो जो रोल्स थे असाइंड, मर्दों के जो रोल्स होते थे और औरतों के जो रोल्स होते थे, राइट, और जो अल्लाह ताला के हुक्म की एप्लीकेबिलिटी होती थी उस मुआशरे के अंदर, क्या हम उस तरफ, हमारी डायरेक्शन है या हमारी डायरेक्शन जो है वो तो इधर है मगरबी जो माहौल, वहां से हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हम उसी के अंदर रह करके जो है ना वो कुरान को किसी तरीके से समहाउ एप्लीकेबल बना देना चाहते हैं, राइट, यानी दीन दुनिया साथ साथ, ठीक है, यानी अल्लाह और शैतान साथ साथ, अल्लाह अकबर कबीर, अलाइन कुरान विद द प्रेवलेंट थिंकिंग रादर देन अलाइनिंग आवर थिंकिंग विद द कुरान, खुद बदलते हैं नहीं, कुरान को बदलने की कोशिश करते हैं। ये लोग कभी ये सोचने के लिए तैयार नहीं होते। ये कौन लोग होते हैं? सतही लोग, ठीक है, सतह परस्त, बुत परस्त सुना था ना आज, सुन ये एक और चीज सुन ले, सतह परस्त, ठीक है, सुपरफिशियल थिंकिंग वाले, एक बड़ा डेरोगेटरी किस्म का एक जो लफ्ज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नजर आता है, डिरोगेटरी किस्म का, यानी एक जरा गलत बड़ा नीच किस्म का वर्ड है, बर्ड ब्रेन, बर्ड ब्रेन का लफ्ज समझो ना, यानी चिड़ी का दिमाग जिसको कहते हैं उर्दू के अंदर। तो ऐसे जो सत्ता परस्त लोग होते हैं ना वो चिड़ी दिमाग, गोया कि चिड़ी दिमाग है उनका, ठीक है, क्या हम पसंद करते हैं इस बात को कि हम चिड़ी दिमाग के किस्म के लोग जो है वो नजर आए? बर्ड ब्रेन यानी अजीब व गरीब किस्म की जो है वो हमारी सता परस्ती है, बात ही कोई नहीं समझ में आती, ला यकादून यफ़क़हून सबीला, बात ही नहीं समझ करके देते ये हदीसा, बात ही समझ कर नहीं, क्या मसला क्या है लोगों के साथ? तो ये लोग कभी ये सोचने के लिए तैयार नहीं होते कि किस के जिस कलाम पर वो तावील और तहरीफ की मशक कर रहे हैं वो किसका कलाम है। जिन नजरियात की खातिर वो खुदा के कलाम में खींचतान कर रहे हैं वो कितने पायदार नजरियात हैं, जो आप इतने जो खुदा के कलाम के दरपे हो गए आप उसकी वजह से। और जब फिक्र इंसानी का काफिला उन नजरियात को रोंद कर और आगे बढ़ेगा तो इस कस्म की तफसीरों और तशरीहात का क्या हशर होगा। तो अपने आप को आप उनके साथ अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। दुनिया में भी जो पायदार नहीं है और आखिरत के अंदर, तो वो जहन्नुम का ईंधन बनेंगी। हम उनके साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं और उल्टा जो है वो कुरान मजीद को भी उनके साथ अलाइन करने की कोशिश करे चले जा रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआ वाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।